मंत्र संख्या 13। अन्य देवाहुः संभवादन्यदाहुर संभवात इति सुश्रुम धीराणां ये नस्तद विचचिरे। अन्वय संभवात अन्यत एव आहुः तथा असंभवात अन्यत एव आहुः इति धीराणां शुभ्रम येन तत विचच्छिरे। पद अर्थ संभवात प्रकृतिजन्य कार्य रूप संसार व्याकृत दृश्यमान जगत की उपासना से अन्यत दूसरा फल एव ही आहुः कहते हैं। असंभवात अक्षय अव्याकृत प्रकृति की उपासना से अन्यत दूसरा फल एव ही आहुः कहते हैं। इति ऐसा धीराणाम स्थित प्रज्ञ मनीषियों का बुद्धिमानों का शुभ्रम सुना है सुश्रुम सुना है ये जिन्होंने नह हमारे लिए तत उसका विचच्छिरे व्याख्यान किया है व्याख्या किया है। भाव अर्थ केवल संभूति अर्थात प्रकृति से जायमान दृश्यमान चराचरात्मक कार्य रूप जगत की उपासना से मिलने वाला फल अलग है और असंभूति अर्थात अव्याकृत अनुत्पन्न प्रकृति की उपासना से मिलने वाला फल अलग ही कहा गया है। इस प्रकार स्वतंत्र रूप से की गई दोनों उपासनाओं के फल पृथक पृथक हैं। यह केवल उपनिषदकार का ही नहीं अपितु उन्होंने अपने समकालीन तथा पूर्ववर्ती आचार्य परंपरा से यह ज्ञान प्राप्त किया है, इसलिए इस कथन में कोई शंका नहीं है क्योंकि उनको धीर पुरुषों ने विस्तृत व्याख्यान करके यह ज्ञान प्रदान किया है। कहने का तात्पर्य यह है कि संभूति तथा असंभूति दोनों उपासनाओं का अलग अलग आश्रयण करके उस परब्रह्म परमात्मा में एकाकार प्राप्त नहीं किया जा सकता और जो लोग ऐसा करते हैं वे वस्तुतः मूर्ख ही हैं। टिप्पणी इस मंत्र में उपनिषदकार ने प्रकृति और जगत के तत्वान्वेषी साधकों पर कठोर आघात किया है परंतु दार्शनिक मीमांसा की दृष्टि से यह आघात निंदापरक नहीं है अपितु उत्साहवर्धक है। कहने का अभिप्राय यह है कि जब तक कोई साधक साध्य विरोधी लक्ष्य के विपरीत तत्व का अनुभव नहीं कर लेता तब तक वह मूल साध्य को अपने साधनों में से सिद्धि में परिणीत नहीं कर सकता। जैसे जल संतरण क्रिया में डूबने की अनुभूति से तैरने की प्रेरणा मिलती है एवं प्रारंभिक गणित विज्ञान का सही उत्तर खोजने के लिए कल्पित अंक ही सहायक होता है, इसी आशय को बुद्धिगत करते हुए इस मंत्र में कारण रूप प्रकृति और कार्य रूप जगत के अनुशीलन पर बल दिया गया है। पूर्वोक्त संभूति अर्थात संभव रूप कार्य जगत के अनुशीलन एवं उपासना से अणिमा महिमा एवं अष्ट सिद्धियां तथा लोक प्रसिद्ध नवनिधियां सुलभ होती हैं। फलितार्थ यह हुआ कि इस संसार में रहते हुए वेद शास्त्रोक्त नियम का पालन करते हुए भी कोई साधक मानव सुलभ उक्त सभी प्रतिष्ठाओं को प्राप्त कर लेता है, किंतु इन प्रतिष्ठाओं की प्राप्ति पूर्व कथित मंत्र में अंधकार के रूप में ही स्वीकृत की गई है। इसका सामान्य अर्थ यह हुआ कि इस संसार में रहकर अनासक्तादि निष्काम कर्म आदि क्रियाकलापों से मानवोचित सभी उपलब्धियां संभव हैं, किंतु मानवोत्तर योगीगण समुचित उपलब्धियां हस्तगत नहीं हो पाती। प्रकृति रूप जगत के कारण तत्व के चिंतन में समाहित चेता साधक अर्थात मानव कार्य रूपी जगत से सूक्ष्म तत्व स्वरूप प्रकृति के अनवरत अनुसंधान के द्वारा और ऊपर उठ जाता है तथा मानव से मुनि इत्यादि की उपाधि सुलभ हो जाती है, परंतु मूल लक्ष्य अर्थात मोक्ष अभी शेष ही रह जाता है। इसी विवेचन को दृष्टि में रखते हुए उपनिषदकार ने संभूति और असंभूति दोनों उपासनाओं की फलश्रुति करते हुए अपर धीर अर्थात स्थित प्रज्ञ विवेचक योगियों के उपदेशों का उद्धरण देते हुए अपने विचारों को साक्ष्य द्वारा परिपुष्ट किया है, जिसका मूलांश धीराणाम येन तत्विचक्षिरे यह है।